जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभा जयगिरी वरधारी, जयगिरी वरधारी। गोपी जना बल्लभा जय गिरि वरधारी, जय गिरि वरधारी। यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना, जय ब्रज जन रंजना। जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना, जय ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक्ष श्रीमद् इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, इस कॉन्विबड़ संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक्ष श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास सदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंद अध्याय 10 भक्तों में शिरोमणि भक्त प्रहलाद महाराज श्लोक क्रमांक 48 योयम् नृ लोके बत भूरिभागा लोकम् पुनाना मुनयो अभियन्ति येषां गृहाणा आवसति इति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं योऽयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् योयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् योऽयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति येषां गृहाणां वसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् Matajis. यम तुम सभी पांडव नृलोके इस भौतिक जगत में बता फिर भी भूरी भागा अत्यंत भाग्यशाली लोकम समस्त लोकों को पुनाना पवित्र कर सकने वाले मुनयः बड़े बड़े साधु पुरुष अभियंती सदैव मिलने आते हैं येषां जिनके गृहान घर में आवसति रहते हैं इति इस प्रकार साक्षात प्रत्यक्ष गूढ़ अत्यंत गोपनीय परम ब्रह्म परमेश्वर मनुष्यलिंगम मनुष्य की भांति प्रकट होकर श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्य की भांति निवास करते हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं। तात्पर्य, भक्त प्रहलाद महाराज के क्रियाकलापों का श्रवण करने के पश्चात परम भक्त को उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने हेतु उत्सुक होना चाहिए, किंतु ऐसे भक्त को यह सोचकर निराशा हो सकती है कि प्रत्येक भक्त प्रहलाद महाराज के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। यह परम भक्त का स्वभाव है, वह अपने आप को सबसे निम्न अयोग्य तथा अक्षम समझता है। इस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज के क्रियाकलापों की कथा सुनकर भक्त प्रहलाद जैसे ही भक्ति के स्तर पर रहने वाले महाराज युधिष्ठिर ने अपने विनम्र स्थिति के बारे में विनयवश अपने विषय में भी ऐसा ही सोचते रहे होंगे। किंतु श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के मन की बात समझ गए, अतएव उन्होंने यह कहकर उन्हें तुरंत प्रोत्साहित किया कि पांडव भी कम भाग्यशाली नहीं हैं, वे भक्त प्रहलाद महाराज के ही तुल्य हैं, क्योंकि यद्यपि नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज हेतु प्रकट हुए थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में पांडवों के साथ निरंतर रह रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की योग माया के वशीभूत हुए पांडव अपनी भाग्यशाली स्थिति के विषय में सोच नहीं सकते थे, किंतु श्री नारद मुनि सहित प्रत्येक साधु व्यक्ति इसे समझता था, इसलिए भी निरंतर महाराज युधिष्ठिर के समीप आते रहते थे। कोई भी परम भक्त जो निरंतर कृष्ण भावना भावित है वह स्वाभाविक रूप से अत्यंत भाग्यशाली है। नृलोके शब्द का अर्थ है भौतिक जगत के अंदर, जिससे सूचित होता है कि पांडवों से भी पूर्व में अनेकानेक भक्त हो चुके हैं, यथा यदुवंश के वंशज तथा वशिष्ठ, मरीचि, कश्यप, ब्रह्मा जी तथा शिवजी, जो अत्यंत भाग्यशाली थे। किंतु पांडव इन सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं। इसलिए श्री नारद मुनि के ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस भौतिक जगत नृलोके में पांडव सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। तो सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद महाराज के उत्तम भक्ति का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर महाराज नम्र हो गए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानिन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। भक्ति के जीवन में नम्र होने के लिए सबसे उत्तम मार्ग है कि अन्य भक्तों की श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन सुनकर, देखकर, अनुभव करके हम अपने आप को उनकी तुलना में बड़ा ही निम्न और नम्र अनुभव करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु अंतलीला के सप्तम स्कंद में ये सिद्धांत ध्वनित करते हैं। बहुत बड़े पंडित जिनका नाम था वल्लभ भट्ट, वो वहाँ वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए, श्री चैतन्य महाप्रभु से पूर्व भेंट कर चुके थे, प्रयाग में उनके साथ आदान प्रदान हुआ था, और अब वो महाप्रभु का दर्शन करने आए, कुछ समय महाप्रभु और उनके भक्तों के साथ समय बिताने आए। चैतन्य चरणाम भोज मकरंद लिहो भजे, येषां प्रसाद मात्रेण पामरोपि अमरो भवेत। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में जो मधु लिप्त है उसका आस्वादन करने मात्र से येषां प्रसाद मात्रेण पामरोपि अमरो भवेत। जो अयोग्य बुद्धिहीन साधक है ऐसा व्यक्ति भी अमर हो जाता है, ये महाप्रभु की कृपा का परिणाम है। तो इसलिए जब हम भक्ति में नेतृत्व की बात करते हैं, लीडरशिप इन डिवोशनल सर्विस, तो इसके अंतर्गत चार बातें होती है। सबसे पहले जो नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। तो वास्तव में जब तक आत्म संयम नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, अर्थात आत्म संयम के माध्यम से हमें अपने चेतना का उत्थान करना होगा। और जब हम अपना चेतना और अधिक श्रेष्ठ करेंगे तो उसको देखकर फिर दूसरे आकर्षित होंगे। तो चेतना का विकास हमारा प्रथम उत्तरदायित्व है। आत्मसंयम, दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात उत्तरदायित्व लेने की क्षमता और उसका उत्साह। तो जब हम उत्तरदायित्व लेते हैं, प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जितना भक्त अपने भक्ति के जीवन में उत्तरदायित्व लेगा उतना उसकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रम जाएगी। एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल व्हेन इंटेलिजेंस इज एंगेज्ड, एंड इंटेलिजेंस इज एंगेज्ड व्हेन वन टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा ये वर्णन किया गया है कि अकाउंटेबिलिटी अर्थात हम जो कार्य करें उसके विषय में कोई गणना हो और उसके विषय में हम लोगों के सामने कुछ हिसाब किताब दे सकें। और चौथा इंटेग्रिटी अर्थात हमारे चरित्र में समन्वय, मनस्येकम कर्मस्येकम वचस्येकम महात्मना, मनसा वाचा कर्मणा तीनों में समन्वय। क्योंकि कहा जाता है अंग्रेजी में करिश्मा कैन अट्रैक्ट समवन बट ओनली कैरेक्टर विल रिटेन देम। तो हो सकता है कोई तात्कालिक आकर्षक शक्ति से हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाए, लेकिन अगर वो लोग चरित्र में हमारा समन्वय नहीं देखते तो फिर अधिक समय तक वो नहीं टिकेंगे। सो सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये चार जो है आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। और ये बड़ा श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी अनुयायियों के अंदर चरित्र के विकास के विषय में बहुत अधिक बल दिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि वल्लभ भट्ट महाप्रभु को जब जगन्नाथपुरी में मिलते हैं तो उनका गुणानुवाद करते हैं। तोमार जे स्मरण करे से होए पवित्र, दर्शने पवित्र होए इत्थे की विचित्र। कहते हैं कि महाप्रभु आपके दिव्य गुणों का दर्शन करके कोई भी व्यक्ति पवित्र होगा ही, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि महान संतों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तुम्हारा जे स्मरण करे से होए पवित्र, केवल आपके पवित्र जो दिव्य स्वरूप है उसका स्मरण करने मात्र से लोग पवित्र हो जाते हैं। और दर्शने पवित्र होबे इत्थे की विचित्र, तो आपके दर्शन साक्षात भौतिक सान्निध्य का दर्शन से अवश्य व्यक्ति पवित्र होगा ही, इसमें कोई दो मत और दो राय नहीं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो शुद्ध्यन्ति वैगृह, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। तो महाराज परीक्षित प्रथम स्कंद भागवत में इस बात का वर्णन करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संतों का स्मरण करने मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी, दर्शन स्पर्श पाद शौच इत्यादि से तो क्या कहने। कलिकालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है तारा प्रवर्तन। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक जो कई बार उल्लेख किया जाता है, ये उस समय जगन्नाथपुरी में वल्लभ भट्ट के मुख से निकला और उन्होंने कहा कि कली काल का धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है तारा प्रवर्तन। कृष्ण के शक्ति के बिना कोई ये हरिनाम संकीर्तन का प्रतिपादन नहीं कर सकता। ताहा प्रवर्तैला तुमी एई तो प्रमाण, कृष्ण शक्ति धर तुमी इथे की प्रमाण। तो कहते हैं कि आपने अपने कार्यकलापों से यह सिद्ध कर दिया दक्षिण भारत की यात्रा में, फिर झारखंड वन से जाते हुए और अन्य कई परिस्थितियों में आपने अपने हरिनाम संकीर्तन की शक्ति से बद्ध जीवों के हृदय को, चित्त को परिवर्तित कर दिया, और क्षण भर में केवल आलिंगन करने मात्र से आपने उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान किया। ये देखा गया है, ये प्रमाणित है, ये लोगों ने साक्षात अनुभव किया है। ताहा प्रवर्तैला तुमी एई तो प्रमाण, ये इस बात का प्रमाण है। अर्थात किसी वैष्णव के प्रगतिशील होने का चिन्ह क्या है कि वह स्पर्श मणि की भांति अन्यों को अपना संग लाभ देकर उनके चित्त वृत्ति में परिवर्तन ला सके, उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के रज के सुगंध के प्रति स्वाभाविक अनुराग आकर्षण उत्पन्न कर सके। तो इसलिए तुमी ताहा प्रवर्तैला तुमी एई तो प्रमाण, आपने ये प्रवर्तन किया है, ये इस बात का प्रमाण है, और इसीलिए कृष्ण शक्ति धर तुमी, आपके अंदर कृष्ण शक्ति है, इत्थे नहीं आन, इसमें कोई संशय नहीं। इसमें क्या संशय है? वेर इज द डाउट? इत्थे नहीं आन, देर इज नो डाउट अबाउट इट। तो इसलिए आप पूरे जगत का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हो। जगते करिला तुमी कृष्ण नाम प्रकाशे, जे तो मा देखे से कृष्ण प्रेमे भासे। आप जगत का उद्धार करने हेतु कृष्ण नाम को प्रकाशित किए हो। जे तो मा देखे, जो आपका दर्शन करेगा उनके अंदर क्या होगा? सही कृष्ण प्रेमे भासे, वो कृष्ण प्रेम के महासागर में निमग्न हो जाएगा। ये आपके दर्शन का प्रभाव है। प्रेम प्रकाशे नहे कृष्ण शक्ति बिने, कृष्ण एक प्रेमदाता शास्त्र प्रमाणे। और कोई कह सकता है कि नहीं नहीं, ये इनके प्रभाव से थोड़ी परिवर्तित हुए हैं, हो सकता है अपने पूर्व जन्म के किसी कर्मानुसार सही उचित समय पर उनके हृदय में परिवर्तन आया हो, हो सकता है जगत में और कोई कारण होगा, हो सकता है इनके दादा नाना जी ने आशीर्वाद दिया जिसके कारण इनके अंदर अचानक कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। तो कहते नहीं, प्रेम प्रकाश नहे कृष्ण शक्ति विने, बिना कृष्ण के शक्ति के किसी के हृदय के भीतर प्रेम प्रकाशित होना संभव नहीं। कृष्ण एक प्रेमदाता, एकमात्र प्रेमदाता है, एक ही व्यक्ति का मोनोपोली है कृष्ण प्रेम देने में। कौन है? कृष्ण एक प्रेमदाता शास्त्र प्रमाणे, ये शास्त्र में वर्णित है। तो अगर आपके संग से किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकाशित हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको यह शक्ति दिया है, अन्यथा यह संभव नहीं। संतु अवतार बहव पुष्कर नाभो सर्वतो भद्र, कृष्णात अन्य कोवा लतासु अपि प्रेमदो भवति। तो कहते हैं भगवान के कई अवतार प्रकट हुए हैं, इन अवतारों की श्रृंखलाओं ने कई प्रकार के अद्वितीय सर्व आकर्षक लीलाओं को प्रकाशित किया। संतु अवतार बहवः, कई अवतार हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्र, और भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु इत्यादि की माध्यम से अनेक अनेक दूसरे अवतार प्रकट हुए। कृष्णात अन्यः कोवा लतासु, लेकिन कृष्ण को छोड़कर अन्य कौन से ऐसे तत्व हैं जो बद्ध जीवों के ऊपर प्रेमदो भवति, जो प्रेम प्रकाशित कर सके। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्पावर्ड आचार्य, किसी भी शक्ति प्राप्त आचार्य या भक्त के लक्षण क्या हैं? उनके आठ लक्षण हैं। सबसे पहले भगवान की अहैतुकी कृपा उन पर हुई है, दे आर empowered with the causeless mercy. Dusra, they are the world preachers of the holy name. Wo harinam ko desh kal patra ityadi ke anusar pure vishv bhar mein prakashit karne ki shakti rakhte hain. Teesra, they purify the heart by the chanting. अर्थात उनके नाम संकीर्तन और जप से लोगों की चित्त वृत्ति शुद्ध होती है. चौथा, दे आर द इनकार्नेशन ऑफ कृष्णास मर्सी, कृष्ण के कृपा के मूर्तिमान स्वरूप हैं. पांचवा, कृष्ण ने उन्हें निजी रूप से स्वीकार किया है, आलिंगन किया है. दे आर एम्ब्रेसिंग कृष्णा पर्सनली. छठा, दे आर द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल वर्णास एंड आश्रम, हर वर्ण और हर आश्रम के वो गुरु हैं. ये नहीं कि केवल कोई पारिवारिक गुरु के रूप में किसी परिवार विशेष के साथ उनका संबंध है. जैसे एक यूरोप में सत्य घटना घटी, किसी एक युवती को 20-21 वर्ष की आयु की वो युवती थी, उसको प्रभुपाद का भगवद गीता प्राप्त हुआ. वो उसे पढ़ने लगी, उसके प्रति वो आकर्षित हो गई और निकटवर्ती हरे कृष्ण मंदिर था, लेकिन कभी वो वहाँ पर गई नहीं और सोच रही थी कि शायद मैं इनसे जुड़ जाऊँ. विचार ही कर रही थी तो उन्होंने अपने माता से भी ये कहा कि हरे कृष्ण आंदोलन के प्रति मेरा आकर्षण बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इनके नियम बड़े कड़क हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं इनके आंदोलन में आत्मसमर्पण कर पाऊंगी, लेकिन घर पर यथाशक्ति यथा भक्ति थोड़ा बहुत अपन करेंगे, लेकिन वहां पर जाकर आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, लेकिन आकर्षण बहुत है. तो माँ भी खुश हो गई कि अच्छा है कि आकर्षण है, लेकिन वहां नहीं जाना चाहती और वहां पर समर्पित नहीं होना चाहती, तो अच्छी बात है. तो उस दिन रात्रि को लगभग इनके चर्चा होते होते 2 बज गए रात को. रात को 2 बजे वो सोई, सुबह लगभग 3 बजे उसके सपने में एक बड़े तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए, चादर वादर ओढ़कर गेरुए वस्त्र के, और वो उनको कहने लगे, पिछले जीवन में आप काफी प्रगति कर चुके हो और अब इस जीवन में आपको आत्मसमर्पण करना आवश्यक है, तुरंत समर्पण करो. वो झटका खा के उठी, स्नान करके माँ को बोली कि मैं जा रही हूँ, और अपना सब कुछ बोरिया बिस्तर बांधकर वो हरे कृष्ण मंदिर में मंगल आरती के पहले 4:30 बजे पहुँच गए. और फिर वहाँ पर जैसे अंदर जाके देखा, प्रणाम किया, तो प्रभुपाद जी का विग्रह देख के समझ गए यही मेरे सपने में आए थे और जो मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे. और फिर वो अभी इस्कॉन के आंदोलन में कई वर्षों से बड़े अच्छी भक्ति कर रही है. तो इसलिए कोई एक पंथ या एक पर्टिकुलर आश्रम या वर्ण के वो गुरु नहीं. एक बार रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा कि आप इन सभी शिष्यों के गुरु हो क्या? प्रभुपाद ने कहा, मैं तो सबका गुरु हूं, यही है कि कोई लोग पहचानते हैं कोई लोग नहीं. अर्थात कृष्ण का ज्ञान और कृष्ण से जोड़ने के लिए हम तैयार हैं, सबको जोड़ने के लिए तैयार है. सातवां कहते हैं, सच अ मोस्ट एडवांस डिवोटी इज कॉल्ड परमहंस ठाकुर. प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, ठाकुर इज एन ऑनर टाइटल फॉर परमहंस. तो ऐसे भक्त को परमहंस ठाकुर कहा जाता है. और फिर प्रभुपाद अंतिम पॉइंट लिखते हैं, वन कैन नॉट बिकम आचार्य बाय मेंटल स्पेकुलेशन. मनोकल्पित विचार से हम आचार्य नहीं बन सकते. तो इसलिए नारायण संहिता के श्लोक को कोट करते हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में और कहते हैं, द्वापरीयैर्जनैर्विष्णु पंचरात्रैस्तु केवलै, द्वापर्यैर, द्वापर युग में लोग विष्णु भगवान के विग्रह को पंचरात्रैस्तु केवलै, केवल पंचरात्र अर्थात जो है अलग अलग प्रकार से पंचरात्र विधि के माध्यम से वो सेवा कर सकते थे, है कि नहीं, अर्च विग्रह की आराधना इत्यादि के माध्यम से। लेकिन कलौ तो नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि, कलयुग में केवल नाम के माध्यम से भगवान हरि की सेवा पूजा संभव है। तो इसलिए महात्माओं की सेवा सात प्रकार से करनी चाहिए। ये तीसरे स्कंद भागवत में देवहूति जी जब अपने पति कर्दम मुनि की सेवा कर रहे हैं तो उसमें यह श्लोक आता है, विश्रम्भेण, सबसे पहले विथ इंटीमसी अर्थात बड़े स्नेहिल भाव से, विश्रम्भेण आत्मशौचेन विथ प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्धता के साथ सेवा होनी चाहिए। गौरवेण, कभी विश्रम्भेण होता है, जब इंटीमसी होता है तो उसका एक दूसरा स्वरूप कई बार अनादर हो जाता है कि नहीं, सतत गमनात् अनादरो भवति, अति परिचयात् अवज्ञा। लेकिन विश्रम्भेण के साथ गौरवेण भी होना चाहिए, स्नेहिल स्निग्ध निकटता के साथ सेवा करते हुए भी सम्मान और मर्यादा के सीमा को कभी पार नहीं करना चाहिए। तो इसलिए गौरवेण अर्थात रेस्पेक्ट। चौथा दमेन च, दमेन का अर्थ है अपने इंद्रियों के ऊपर निग्रह। जब हम अभी कथा सुन रहे हैं तो एक कथा की ध्वनि आप सुन रहे हो और अन्य कोई भी उच्च स्वर की ध्वनि अगर यहां पर आरंभ हुई तो कथा श्रवण में बाधा होगी। उसी प्रकार अगर हमें कृष्ण और वैष्णवों के आदेश को ध्यान से सुनना हो तो अपने इंद्रियों के चीत्कार को अगर सुनते रहेंगे और इंद्रियों के ललक को पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे तो फिर भगवान श्री कृष्ण, श्री गुरु, परंपरा, आचार्यगण और हमारे साथ रह रहे वैष्णवों के आदेश की ध्वनि उसके अंदर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम अपने ही इंद्रियों की चीख पुकार को सुनते रहेंगे, जो इंद्रियां मांग करते रहेंगी उनको ही सुनते रहे, तो फिर जो सेवा की पुकार हमारे सामने हो रही है उसको हम कैसे सुन सकते हैं। इसलिए दमेन च, इंद्रियों का निग्रह महत्वपूर्ण है, सेंस कंट्रोल। पांचवा शुश्रूषया अर्थात विनम्रतापूर्वक सेवा, सर्विस, शुश्रूषया। और सातवां सौहृदेन, छठा अर्थात सौहृदेन मीन्स लव, प्रेम भरा आदान प्रदान, टू बी द वेल विशर ऑफ द वन वी आर सर्विंग, सौहृदेन। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, है कि नहीं। इंद्रदुम्न महाराज अपने माता को प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनकी माँ ने कहा कि मेरा इतना कुछ रुचि नहीं, तो महाराज ने उनको प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ का एक सेट जो था दे दिया था, तो उन्होंने अपने घर पर रख दिया था, पीछे गैरेज में रख दिया था। अचानक एक दिन रात को महाराज को फोन आया उनकी माँ का, कई वर्षों के बाद। तो महाराज ने फोन उठाया तो उनकी माँ कह रही थी, बेटा मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, वो और कहीं पर थी दूसरे देश में। तो ये बोले अरे वृंदावन जाने जाती हो, वो भी रात के इतने अचानक ये फोन। ठीक है हम लोग व्यवस्था करेंगे लेकिन अपन कल बात करते हैं, बहुत रात हो गई। फोन रख दिया और सोचने लगे अचानक क्या हो गया माँ को। लेकिन अच्छा लगा उनको कि इतने वर्ष जो हमने शायद ग्रंथ दिए थे उसका कुछ असर हुआ होगा, जो कुछ भी होगा। अगले दिन सुबह उन्होंने फोन मारा, उनके भाई ने उठाया, बोले माँ ने कल रात को फोन किया था, फोन दो उनको। भाई ने कहा वो देह त्याग दी। तो उन्होंने कहा अरे रात को तो बात हुई थी फोन पे। बोले नहीं, वो रात को जो है 6 महीने से उनको कैंसर हुआ था। तो इंद्रदुन महाराज ने कहा अरे 6 महीने से कैंसर हुआ था, आपने मुझे बताया नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने कहा था उनको बताते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं उनको डिस्टर्ब मत करो, वो अपने लगे हुए हैं। और फिर जब कैंसर हुआ तो फिर वो पीछे गई और जितने बुक्स थे गैरेज से लेके आई और हर रोज एक जगह बैठकर उन बुक्स को पढ़ती थी और उनको अंडरलाइन करती थी। और फिर आपके जितने लेक्चर्स थे वो सब टेप मिनिस्ट्री किस मंगा कर उसको वो सुनती थी। और अचानक कल कुछ पीड़ा बढ़ गई, क्लेश बढ़ गया, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ, मुझसे कहा कि फोन लगाओ। तो फिर उनके मन में एक ही इच्छा थी वृंदावन जाना है। तो महाराज बिल्कुल विस्मित हो गए कि जो ग्रंथ हमने इतने वर्षों तक वहां पर रखा था उसके संग से उचित समय पर कैसे प्रभाव पड़ा। और फिर अंतिम क्षणों में वो भगवान का नाम लेते हुए इस प्रकार वो अपना शरीर छोड़ दी। तो महाराज ने फिर जब आकर उनके जो एशेस थे उसको फिर यमुना में समर्पित करने का व्यवस्था किया, क्योंकि उनकी इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी वृंदावन जाना। तो कैसे जब हमें सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता हो, ये भक्ति का मार्ग सहायक बनता है। तो सौहृदयन का अर्थ होता है कि द वेल विशिंग फ्रेंड, जो किसी को कृष्ण भक्ति का भेंट समर्पित करे वो व्यक्ति का वास्तविक सौहृद बनता है। ही इज द बेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड। शुश्रूषया सौहृदेन, और सातवां वाचा मधुरया च भो, अपने वाणी के मधुरता से उन्होंने उनके चित्त को हर लिया, अर्थात देवहूति ने कर्दम मुनि को। अर्थात मीठे वचनों से, क्यों क्यों ये आवश्यक है, क्योंकि सेवा करने की प्रक्रिया में कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसके कारण मन विचलित होगा, उद्वेगित होगा, क्योंकि हम अन्य किसी के इच्छा के अनुसार अगर कोई कार्य कर रहे हों तो हो सकता है हमारी अपेक्षा के विपरीत कई परिस्थितियां उठ खड़ी होंगी। तो ऐसी अवस्था में जब मन उद्वेगित हो, तो प्रभुपाद ने जैसे कृष्णा बुक में लिखा है, राधानाथ महाराज कई बार कहते रहते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड बाई इज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। तो वाचा मधुरया, तो वाणी के मधुरता से फिर हम अपने मन के उस कड़वाहट को शांत करने का प्रयास करते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचनेषु किं दरिद्रता। महाविष्णु गोस्वामी महाराज का ये काफी फेवरेट श्लोक था, कई बार बोलते रहते थे। क्या? प्रिय वाक्य प्रदानेन, जब प्रेम से अगर शब्दों का प्रयोग करो, प्रिय वाक्य प्रदानेन, अगर प्रेम से अगर प्रिय शब्दों का प्रयोग करो तो क्या होता है, सर्वे तुष्यंत जंतव, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रेम भरे शब्दों को सुनकर, मधुर वाक्यों को सुनकर प्रसन्न न हो। तस्मात् तदेव वक्तव्यम्, इसलिए हमेशा ऐसे ही प्रेम भरे मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वचनेषु किम दरिद्रता, मधुर शब्द बोलने में कंजूसी क्यों करो, है कि नहीं? हमारे सीए साहब सर हिला रहे जोर से, बोले सही, इसमें कोई खर्चा है ही नहीं। वचनेषु किम दरिद्रता, मधुर शब्दों का प्रयोग करो चाहे जितना भी प्रयोग करो, खर्चा तो है नहीं, तो फिर दरिद्रता क्यों? तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि सेवा करते हुए वाचा मधुरया चब हो। बड़ा सुंदर यहां पर भागवत में वर्णन आया है। तो इसीलिए जो यहां पर हम देख रहे हैं, भट्ट जी जो आए हैं यहां पर जगन्नाथपुरी में, श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति कर रहे हैं। और किसी को लगेगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं और महाप्रभु के भाव में बिल्कुल सम्मिलित हो चुके, लेकिन वास्तव में जब तक हम किसी व्यक्ति के विजन को नहीं समझते, उनकी दृष्टि को नहीं समझ सकते, नहीं समझते, तब तक हम अपने इच्छाओं के का उनके साथ समन्वय नहीं कर पाते। सो विजन मीन्स द एबिलिटी टू सी इन द फ्यूचर द डिजायर्ड रियलिटी। तो भविष्य में जो हमें वांछित सत्य है उसे देखने की क्षमता, उसे कहते हैं दूरदर्शिता या विजन। दैट विजन मे नॉट बी विजिबल एट द प्रेजेंट, वो वर्तमान में भले वो दृश्य हम देख न सकें। तो इसीलिए लीडर या नेता, उसका अर्थ ही होता है वो जो वर्तमान में न दिखते हुए दृश्य को दर्शा सके। ही इज लाइक अ टूरिस्ट गाइड, जो गाइड है, जो लोगों के समक्ष किसी दृश्य को प्रस्तुत करता है जो लोगों ने नहीं देखा हो। तो इसलिए शेयर्ड विजन मीन्स एवरीवन पुट्स असाइड डिफरेंसेस एंड वर्क्स टुवर्ड्स कॉमन कॉज। तो एक होता है विजन, तो नेता का अपना विजन है, लीडर का, लेकिन उसका सबसे प्रधान कर्तव्य है कि वो अपना विजन, वो अपने दृश्य को लोगों के साथ वितरित करे, बांटे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के 7 पर्पस बनाए, 7 पर्पसेस, और उसको लेकर इस्कॉन के जितने उनके साथ जुड़े वो 11 वर्षों में जो उनके साथ सेवा किए, प्रभुपाद जी ने उनके साथ अपने उस विजन को शेयर किया कि भाई ये महाप्रभु के इस आंदोलन का प्रचार करके लोगों के हृदय को परिवर्तित करना हमारा अपना एक विजन है, इसको हम इसे पूरा करेंगे। तो ये प्रभुपाद जी ने किया। और कई बार लगता है कि एक बार किसी को बता दो तो लोग समझ जाएंगे, एक बार बता दिया भाई ये विजन है चलो करो, नहीं। जब हम किसी यात्रा में हो और जब गंतव्य बहुत दूर हो, तो उस यात्रा में चलते हुए यात्रियों के मन में कई बार संशय उठता रहता है कि क्या हम सही मार्ग पर हैं, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं, क्या इस दिशा में चलते हुए हम गंतव्य को पहुंच जाएंगे। निरंतर मन में संशय उठता रहता है, इसलिए नेता का कर्तव्य बनता है कि वो निरंतर संशय समाधान करते रहे और बारंबार उस विजन को, उस दूरदृश्य को दोहराते रहे। इसलिए कॉन्स्टेंट शेयरिंग ऑफ विजन बाय द लीडर क्रिएट सिनर्जी। तो लीडर का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उस विजन को अथक रूप से निरंतर दोहराए। और जब ऐसा हो तब फिर सिनर्जी या समन्वय उत्पन्न होता है। तो इसलिए जो कोई भी टीम चलता है उसका जो मिशन है, सब लोग समझते हैं कि हाँ ये हमारा मिशन है, लेकिन एक्शन और मिशन में 4 प्रकार के भेद हो सकते हैं। हो सकता है जो नेता ने कहा ये हमारा मिशन है, वो मिशन को लेकर सब स्वीकृत हो, वी अग्री विद द मिशन, दैट मीन्स वी आर ऑल ऑन द सेम पेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिशन, लेकिन हमारा एक्शन भिन्न हो, हम वास्तविकता में उसे कर न पाए। प्रभुपाद ने कहा 16 माला करना है, ध्यान पूर्वक जप करना है, निरपराध भक्ति करनी है, हम उस मिशन को स्वीकार करते हैं, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज विद द मिशन, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन हो सकता है उसमें भिन्नता हो। दूसरा, जब मिशन भिन्न हो लेकिन एक्शन एक हो, अर्थात हम भी आकर भगवान के सामने प्रणाम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति जो अपना 10th का एग्जाम पास करना चाहता है वो भी आके प्रणाम कर रहा है, तो एक्शन एक ही है लेकिन हमारा मिशन क्या है, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा, और उसका बिल्कुल नहीं, उसका वही है न को छोड़ के। तो भौतिकवादी व्यक्ति भी मंदिर में आकर प्रणाम करते हैं, है कि नहीं? तो कई बार जो है ये महाप्रभु ने जो मिशन दिया बहुत ऊंचा लगता है और बड़ा कठिन लगता है, तो इसलिए एक्शन भले समान लगे। एक अपना भक्त एक मंदिर में थे और उसकी बड़ी इच्छा थी विदेश जाने की, इस्कॉन के मंदिर सब जगह हैं, अरे भारत में तो कई मंदिर हैं, 20 लाख मंदिर हैं, लेकिन विदेश के मंदिर में जाके सेवा करने मजा आएगा। तो वो भी जो शिक्षाष्टकम प्रेयर बोलता था तो उसमें न धनम न जन्म न सुंदरीम के आगे बोलता था मम जर्मनी जर्मनीश्वर, प्रभु मुझे जर्मनी भेज दो। तो एक्शन एक ही है लेकिन मिशन अलग है। तो वास्तविक मिशन और जो हम कर पा रहे हैं, तो दूसरा तीसरा हो गया, मिशन भी अलग है एक्शन भी अलग है, तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। जो भौतिकवादी हैं और जो आध्यात्मिक मार्ग में है, हमारा मिशन भी अलग है एक्शन भी अलग है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और वो लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई आप जो हो आप अपने आप में अलग हो, तो इस तरह से पूरी तरह दोनों में भिन्नता है, कोई उसमें दो मत है ही नहीं। और चौथा जो सबसे वांछित है और अति आवश्यक है, वो मिशन भी एक और एक्शन भी एक। सो दिस इज द डिजायर्ड गोल, कि हम सबका मिशन भी एक हो और एक्शन भी एक हो और भगवान के साथ पूरी तरह हम जुड़ जाएं। क्योंकि जब हम कोई संदेश सुनते हैं फिर वो संदेश को सुनने में और उसको समझने में और फिर आंतरिकरण करके उसको अपनाने में कई बार भिन्नता हो जाती है। द मैसेज इज स्पोकन, टेस्ट टू बी अंडरस्टूड, टेस्ट टू बी एग्जीक्यूटेड। हमारे एक बार चौपाटी में जो बहुत साल पहले गेस्ट आने वाले थे, तो उन्होंने एक मेल भेजा था गेस्ट डिपार्टमेंट को, है कि नहीं? तो गेस्ट डिपार्टमेंट को मेल आया कि ऑन सो एंड सो डेट बाय दिस फ्लाइट गौरी इज कमिंग, प्लीज रिसीव एंड मेक अरेंजमेंट एंड योर सर्वेंट सची। तो अपने गेस्ट डिपार्टमेंट को लगा किसी माताजी ने मेल लिखा है और कोई और माताजी आ रही है, और फिर अपने गरुड़ प्रभु थे उनको भेजा पिकअप करने, माताजी आश्रम में व्यवस्था कर दी थी। और जब वहां पर गए तो मालूम पड़ा कौन थे, भक्तिवेदांत मैनर के प्रेसिडेंट गौरी प्रभु वो आए थे, और लेटर आया था सच्ची किशोर से उसने अपना शॉर्ट फॉर्म में शची करके लिख दिया था। तो ये अपना ढूंढ रहा है माता जी को, और ये आ गए सामने, तो ये प्रणाम किए, तो बोले चल रहे हैं ना मंदिर, बोले आप गौरी माता जी का, अरे गौरी माता जी नहीं, गौरी प्रभु। तो फिर वो अब चलाते चलाते रात के 2 बजे थे, अब समझ में नहीं आ रहा था उनको कहाँ रखे, क्योंकि माता जी आश्रम में ही व्यवस्था थी, बाकी सब गेस्ट रूम फुल था। अब इतने बड़े प्रेसिडेंट, वो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया, अब क्या होगा, तो कहीं तो उनको बिठाना है, अभी गेस्ट रूम में किसी को खटखट करके अंदर नहीं घुसा सकते। तो बोले आश्रम में कोई खाली जगह होगी जहाँ कोई नहीं होगा तो इनको वहाँ सुला देता हूँ करके वो अपना दिमाग लगा के आश्रम में लेके आए। तो वो जब आके देखे, वो बिल्कुल क्रोधित हो गए, बोले यार ये क्या है, रात को आश्रम में लेके आए हो? और फिर कहा कि नहीं, यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये हो नहीं सकता। तो फिर उनको बगल का जो है, उस दिन रात को कैसे भी करके वो एडजस्ट किए कहीं पर, फिर अगले दिन सुबह राधानाथ महाराज सब गेस्ट डिपार्टमेंट मेरे को सब बुलाकर लेफ्ट एंड राइट इतना झाड़े, बोले इतने साल से मैं लंदन जाता हूँ, इनके घर पर रहता हूँ, इतना सत्कार करते हैं लोग मेरा, और आपने इनके साथ ऐसा किया अपमान कर दिया मेरा। तो फिर गेस्ट डिपार्टमेंट वाले बोले अब क्या करें, ऐसा लिखा गौरी इज कमिंग शची तो हमको लगा कोई माता जी आ रही है, तो हमारी क्या गलती, अरे तुमको पूछना चाहिए था ये क्या ये क्या? फिर सामने जो है हमने उनका बगल वाले होटल में अरेंजमेंट किया, और फिर अभी तक वो जब मैं मिलता हूँ लंदन में गौरी प्रभु बोलते देख तुमने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, लेकिन आपको यहाँ पर VIP ट्रीटमेंट दे रहा हूँ मैं तो कोई अगर कोई संदेश दे लेकिन उसको हम पकड़ ना पाए तो फिर एक्शन कुछ और हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अब ये स्पष्ट रूप से बताना चाहते कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। यहाँ पर भट्ट जी ने कई अच्छी अच्छी बातें बताई कि कलिकालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन, महाप्रभु की स्तुति ही की है। महाप्रभु के विषय में कहा है कि आपने ही जगत में हरिनाम का प्रकाश किया, भगवान की विशेष कृपा आप पर हुई है, ये सब कहा है अपने वाणी से वो कह रहे हैं, लेकिन महाप्रभु के मन में डाउट है कि क्या इनके मन में भी वही भावना है जो मैं चाहता हूं। वो क्या, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु विचार करते हैं कि इनके मन में नम्रता उत्पन्न करने के लिए अब कुछ करना होगा, क्योंकि भले ये मेरी स्तुति कर रहे हैं, ये मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन दूसरे भक्तों की तुलना में भी वो अपने आप को नम्र मानते हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा हम लेते हैं। तो अब महाप्रभु विचार करते हैं कि जब तक कोई भक्तों के संग में कोई भक्तों की श्रेष्ठता को स्वीकार न करे, भक्तों की सेवा प्रामाणिक रूप से या नम्रता पूर्वक न करे, और जब तक भक्तों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार न हो, तो 3 things महाप्रभुज मिशन, एक्सेप्ट डिवोटी सुपीरियोरिटी, क्योंकि कृष्ण का सुपीरियोरिटी तो कोई भी स्वीकार कर लेगा, कृष्ण महान है तो कोई भी स्वीकार कर लेगा, लेकिन महाप्रभु का क्या है, गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास। टू एक्सेप्ट डिवोटी सुपीरियोरिटी, भक्तों की श्रेष्ठता को स्वीकार करना पहला। दूसरा, देन सर्व द डिवोटीज सबमिसिवली, और भक्तों को नम्रता पूर्वक सेवा करो। और तीसरा, देन लर्न फ्रॉम द डिवोटीज सिंसियरली, उनसे शिक्षा ग्रहण करो। कल मैं भक्ति वैभव पुरी महाराज का एक सुन रहा था प्रभुपाद के बारे में वो एक वर्णन कर रहे थे, तो तब उस समय कह रहे थे, जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, कोई किसी के सुनने के मूड में नहीं है। तो इसलिए आज कोई गुरु नहीं कह सकता कि मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे उतने शिष्य हैं, क्योंकि शिष्य वो जो आपकी बात माने। तो इसलिए कोई मेरे को पूछता है, महाराज आपके कितने शिष्य हैं, तो कहते मैं सरस्वती ठाकुर का कहता हूं, क्योंकि सरस्वती ठाकुर को कोई पूछता था, क्योंकि सरस्वती ठाकुर के हजारों शिष्य थे। लेकिन कोई आकर पूछता था सरस्वती ठाकुर को कि ठाकुर जी आपके कितने शिष्य हैं, वो कहते थे मेरे चार शिष्य हैं, दो हाथ दो पैर। ये जो मैं बोलूंगा वो मानेंगे, ये चार को छोड़ के बाकी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं उनको अपने शिष्य के लिस्ट में नहीं रखता हूं। तो इसलिए कलयुग में कोई कहे मेरा ये शिष्य है, वो भ्रम में है, क्योंकि कलयुग है मनमानी का युग। अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति कृपा करके सोच ले मैं इनकी बात मानूंगा, ये उसके कृपा का परिचय है, ये बड़ा मर्सीफुल है वो, कि वो बात स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए यहां पर अब श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कई श्लोकों में एक एक भक्त का गुण का वर्णन करते हैं भट्ट महाशय के सामने। महाप्रभु कहे सुन भक्त महामति, मायावादी सन्यासी आमी, ना जानी कृष्ण भक्ति। देखिए भट्ट जी, आपने तो मेरी बहुत स्तुति की है, मैं ये हूं वो हूं सब कहा है। महाप्रभु कहे भट्ट सुन महामति, लेकिन आप सबसे कुशाग्र बुद्धि वाले, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप हैं। महामति मायावादी सन्यासी आमी, मैं तो मायावादी सन्यासी हूं। ना जानी कृष्ण भक्ति, मैं कृष्ण भक्ति नहीं जानता वास्तव में। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु दिखला रहे हैं, कल्टीवेटिंग भक्ति मीन्स कल्टीवेटिंग द विजन टू सी द गुड क्वालिटीज ऑफ अदर डिवोटीज टू लर्न। तो भक्ति का अर्थ है कि ऐसे हम दृष्टि पैदा करें जिससे हम दूसरे भक्तों के सद्गुणों को पकड़ सकें, दुर्गुणों को नहीं, दोष को नहीं, सद्गुणों को पकड़ सकें। और तब जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु यहां वर्णन कर रहे हैं, अगर भक्ति में आगे बढ़ना हो तो सबसे दो मुख्य गुण क्या है, सबसे पहला है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी टू कन्विंस अदर्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस विथ कन्विक्शन केयर एंड क्रिएट द राइट एग्जाम्पल। जब तक नम्रता नहीं होगी तब तक हमारे अंदर भक्ति में कन्विक्शन या तीव्र श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। जब तक नम्रता नहीं होगी तब तक हम दूसरों के विषय में करुणा व्यक्त नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सप्रेस केयर। एंड देन थर्ड इज टू क्रिएट द राइट एग्जाम्पल, उचित उदाहरण हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी टॉलरेंस के विषय में बड़ा सुंदर एक परपोट में लिखते हैं, अ सोबर पर्सन व्हेन हैरेस्ड बाय अदर लिविंग बींग्स, धीर पुरुष जब दूसरे जीवों के द्वारा प्रताड़ित हो, परेशान हो दूसरों के कारण, जब हम दूसरों के कारण परेशान हो, अ सोबर पर्सन व्हेन हैरेस्ड बाय अदर लिविंग बींग्स शुड अंडरस्टैंड, उसे क्या समझना चाहिए, दैट हिज एग्रेसर्स आर एक्टिंग हेल्पलेसली अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। तो सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि जो मुझे कष्ट दे रहा है, जो मुझ पर आक्रमण कर रहा है,
जो मुझे परेशान कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, वो वास्तव में भगवान के नियंत्रण के अंतर्गत निस्सहाय रूप से नृत्य कर रहा है। ये भगवान के शक्ति और ईश्वरता के अंतर्गत केवल एक कठपुतली की तरह नाच रहा है। ही शुड अंडरस्टैंड दैट हिज एग्रेसर्स आर एक्टिंग हेल्पलेसली अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड, पहला। और दूसरा, बिकॉज ऑफ सीइंग दिस, उसे वो व्यक्ति नहीं देखना चाहिए, उस व्यक्ति के पीछे जो रस्सी बंधी है और उस रस्सी के अंतर्गत भगवान अपनी उंगलियों से उसे नचा रहे हैं, वो भगवान का वो दर्शन करे कि वो भगवान इसे नचा रहे हैं। अगर वो दिख जाए तो दूसरा, ही शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ हिज ओन पाथ। फिर वो अपने भक्ति के इस प्रगतिशील पथ से भटके नहीं। तो इसलिए जब तक हम भगवान के उस हस्ताक्षेप को न देखें, हम उस तथाकथित आक्षेप से परेशान होकर भक्ति मार्ग से स्खलित हो जाएंगे, उद्वेगित होकर। तो इसलिए यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ये वर्णन करना चाहते हैं कि जब तक नम्रता न हो तब तक सहनशीलता संभव नहीं, और जब तक सहनशीलता न हो, नम्रता और सहनशीलता न हो, हम इस भक्ति के मार्ग पर स्थायी रूप से सेवा नहीं कर सकते। और इसलिए ऐसे नम्रता और सहनशीलता को उत्पन्न करने के लिए अब महाप्रभु इस सेक्शन में सबसे शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं। व्हाट इज दैट? अप्रिशिएट डिवोटीज। दूसरे भक्तों के गुणों को आप देखो, समझो और उसकी कदर करो, उसका सम्मान करो। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, तार संगे मन तार संगे आमार मन होइला निर्मल। तो सबसे पहले महाप्रभु भट्ट को देख के कहते हैं कि आप मुझे कह रहे हो कृष्ण शक्ति बिना नाहे तारा प्रवर्तन, कि मेरे अंदर कृष्ण की शक्ति है नहीं, आपके अंदर भ्रम है। सबसे पहले देखो ये कौन है? अद्वैत आचार्य। पता है क्या ये कौन है? बोले नहीं, मैं बताता हूं। साक्षात ईश्वर, डायरेक्ट ये ईश्वर हैं। और तार संगे आमार मन होइला निर्मल, इनके संग से मेरा मन निर्मल हुआ है। आप मेरे अंदर जो भी सद्गुण देख रहे हो, जो भी आप कृष्ण भक्ति की मूर्ति मेरे अंदर देख रहे हो, उस मूर्ति की शिल्पकारिता में इन सभी वैष्णवों का सहयोग है। तो इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इसका श्रेय नहीं ले सकता, इन सभी वैष्णवों के हस्ताक्षेप के कारण आज जो मेरे भक्ति की मूर्ति तैयार हुई है। और इसमें अद्वैत आचार्य ने क्या योगदान दिया है? नंबर वन, ही इज पावरफुल, शक्तिशाली है। नंबर टू, ही इज प्योर, इनकी शुद्धता वर्णन से परे है। सर्वशास्त्रीय कृष्ण भक्ति नहीं जारसम, अत एव अद्वैत आचार्य तार नाम। अरे भट्ट, आप जानते हो क्या इनका नाम अद्वैत आचार्य क्यों है? अत एव अद्वैत आचार्य तार नाम। अद्वैत आचार्य नाम क्यों है? क्योंकि सर्वशास्त्र, इनके जैसा शास्त्रों में निपुण कोई है ही नहीं। तो तीसरा गुण क्या है? ही इज हाईली रियलाइज्ड बोथ इन शास्त्र, सर्वशास्त्रीय कृष्ण भक्ति और भक्ति में भी, ऑल्सो इन डिवोशन। सर्वशास्त्रीय कृष्ण भक्तिये नहीं जारसम, इनके जैसा कोई नहीं, शास्त्रों में और भक्ति में ऐसा साक्षात्कार किसी ने नहीं पाया। सो थर्ड ही इज रियलाइज्ड। और चौथा, हाँ, इसलिए इनका नाम अद्वैत, अर्थात ही हैज नो कॉम्पिटिटर, कोई जोड़ नहीं, कोई स्पर्धा नहीं, अतएव अद्वैत। और फिर कहते हैं चौथा गुण क्या है, जहार कृपा ते म्लेच्छेर होए कृष्ण भक्ति के कोही ते पारे तार वैष्णवता शक्ति। इनके वैष्णवता की शक्ति को कौन वर्णन कर सकता है। जहार कृपाते, न केवल इतने साक्षात्कारी पुरुष हैं, इतने शास्त्र में पारंगत विद्वान है, लेकिन इस विपुल विद्वत्ता के कारण और भक्ति के प्रचंड वेग के कारण इनके अंदर रंच मात्र भी दंभ नहीं, अहंकार नहीं, और ये केवल करुणा वरुणालय है और सभी जीवों का उद्धार करने में लगे हुए हैं, जो बिना किसी योग्यता के म्लेच्छ हैं। जहार कृपा ते म्लेच्छेर होए कृष्ण भक्ति, उन सभी के अंदर ये कृष्ण भक्ति प्रचुर मात्रा में प्रविष्ट कराते हैं। और कौन इनके वैष्णवता और करुणा के गुणगान कर सकता है। ही इज द मोस्ट मर्सीफुल, सो ही इज पावरफुल, प्योर, रियलाइज्ड एंड मर्सीफुल। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अद्वैत आचार्य। आप कहते हो मैं महान हूं, मैं कृष्ण शक्ति प्राप्त हूं, ये हो, अरे इनको देखो, देखा है क्या? तो महाप्रभु बड़े आत्मविश्वास के साथ, तीव्रता के साथ, बल के साथ अद्वैताचार्य के गुणों का निरूपण करते हैं। और ऐसा नहीं, अरे अद्वैताचार्य बहुत महान है, अच्छा कैसे? अरे बहुत ही महान है। कैसे? अरे बहुत ही महान है भैया। कैसे महान है? अर्थात उन्होंने उसके ऊपर मनन किया है, उसका स्मरण किया है, हृदय के अंतःकरण से उनके गुणों के प्रति उनका सम्मान है, केवल सामाजिक औपचारिकता मात्र के लिए नहीं कि कह दिया अरे वाह क्या भक्त है, अरे तुम्हारे ऐसा डिवोटी तो है ही नहीं, क्यों? अरे बस ज्यादा मत पूछो, गाली निकलेगा। ऐसा केवल ऊपर ऊपर से नहीं विचार कर रहे हैं। तो इसलिए गुणवान शब्द का जो वर्णन आया है, तो गुण शब्द का एक अर्थ क्या है? इंटरेस्टिंग मीनिंग, रामायण में इसका अर्थ आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुण? गुण लिटरल मीनिंग क्या है? गुण मीन्स क्वालिटीज विच आर रिपीटेडली कंटेम्पलेटेड बाय द सरेंडर्ड डिवोटीज। क्वालिटीज ऑफ कृष्णा एंड राम ऑफ द लॉर्ड which are repeatedly contemplated by the surrendered devotees, जो समर्पित भक्त जिन गुणों को या जिन भगवान के विभिन्न प्रकार के प्रकट जो शैली है उसके ऊपर निरंतर जो स्मरण करे, मनन करे, qualities repeatedly contemplated, तो केवल एक बार उसका स्मरण नहीं करना, चिंतन नहीं करना, बारंबार चिंतन करना। तो जब बारंबार हम अपने चिंतन के अस्त्र से हम अपने पाषाण हृदय जो अनर्थ से भरे हुए हैं उस चट्टान को भेद सकते हैं। द हार्ड tone of our anarthas is broken by repeated contemplation of the devotees' divine qualities. Bashi badanyo gunavan riju shuchi mrdu dayalu madhura sthira sama kriti kritagya tvamasi svabhavata samasta kalyana gunamrto dadhi। Sri Ramchandra ji ka varnan aa raha hai, wo kya hai? समस्त कल्याण गुणामृतोदधि। रामचंद्र जी के सारे गुण क्या है? अमृत की भांति। कितने गुण हैं? ओदधि, सागर की तुल्य। गुणामृतो दधि, ही इज एन ओशन ऑफ डिवाइन क्वालिटीज। एंड व्हाट इज द इफेक्ट? कल्याण। ये शुभ परिवर्तन लाते हैं मनन करने पर। दे आर ए बोर्ड ऑफ ऑस्पिशियसनेस। समस्त कल्याण गुणामृतो दधि। क्या है? नंबर वन, वशी, अर्थात जो भक्तों के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। पहला, वदान्यो, बड़े कृपालु हैं। वदान्य अर्थात इज मैग्नानिमस। तीसरा, गुणवान, हर प्रकार के सर्वगुण संपन्न हैं। रिजुहु अर्थात ऑनेस्ट। पांचवा, शुचि ही, शुद्ध हैं। मृदु, बड़े जो मृदु अर्थात बहुत धीमे, सॉफ्ट, कोमल, उनके जो गुण हैं भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है वो बड़ा ही कोमल होता है। दयालु, जो कि दया के सागर हैं। मधुरह, स्थिरह अर्थात स्टडी, उनके गुण परिवर्तित नहीं होते। इस जगत में कोई भी वस्तु का गुण बदलता है। कोई पुलाव हो, बिरयानी हो, अभी बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, उसी को उठा के रख दो बाहर, तीन दिन के बाद वही विषैला हो जाएगा। वही जो बड़ा अमृत के तुल्य लग रहा है, जिसको झपट झपट कर लोग खा रहे हैं, उसको उठा उठा के पटकेंगे बाहर, क्योंकि गुण बदल दिया। लेकिन भगवान का कभी गुण बदलता नहीं, स्टडी। और समह, सबके प्रति समान। कृति अर्थात ब्लिसफुल, आनंद के वास्तविक खान। कृतज्ञ, त्वम असि स्वभावतः, आपके अंदर ऐसे दैवी गुण हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में वर्णन किया जा रहा है। और इसलिए यहां कह रहे हैं, सचास्य कथयाम आस शबरीम धर्म चारिणीम श्रमणीम धर्म निपुणम अभिगच्छेति राघवम। शबरी के विषय में वर्णन आ रहा है कि सचास्य कथयाम आस शबरीम धर्मचारिणीम। शबरी प्रतीक्षा कर रही थी, धर्मचारिणीम थी, धर्म के अनुसार कार्य कर रही थी। श्रमणीम, और वो वास्तव में एक सन्यासिनी की भांति ही थी। धर्म निपुणम, वो धर्म के पालन में श्रेष्ठ थी। अभिगच्छेति राघवम, और प्रतीक्षा कर रही थी कब मैं भगवान श्री राघव के धाम में प्रविष्ट हो जाऊं। तो चतुर्थम आश्रमम प्राप्त श्रमणा नामते स्मृता, जो चतुर्थ आश्रम है, सन्यास आश्रम है, उसको कहते हैं श्रमण। जो श्रमण अर्थात जो प्रयत्न करे केवल भगवान का चिंतन करने में। और इस प्रकार यहां वर्णन आ रहा है कि ठाकुर भक्ति विनोद वर्णन करते हैं कि, और जो लोकाचार्य रामानुज संप्रदाय के आचार्य हुए, उन्होंने भी वर्णन किया कि ये शबरी किसका प्रतीक है? आचार्य अभिमान। शबरी ने क्या प्रकट किया? आचार्य अभिमान प्रकट किया। आचार्य अभिमान की मूर्तिमत्ता स्वरूपा थी। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने भी उस अर्थ पंचक को बंगाली में लिखा है, और उस अर्थ पंचक में उन्होंने आचार्य अभिमान के 6 गुण बताए हैं, लक्षण। शबरी के अंदर वो आचार्य अभिमान था, अर्थात हम अपने आचार्यों के लिए प्रतीक्षा करते हैं जब वो हमें अपने साथ ले चले। वो केवल प्रतीक्षा कर रही थी शबरी। तो सबसे पहले आचार अभिमान का लक्षण है आमी आशक्त ओ दीन। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं फर्स्ट इज अ डिसाइपल फील्स इनकेपेबल। शिष्य को लगता है कि मैं असमर्थ हूं। दूसरा एई बुद्धि ते उपयुक्त, उसे लगता नहीं कि मेरे अंदर बुद्धि पर्याप्त मात्रा में है, इनकेपेबल। एंड सेकेंड रेचेड, नॉट हैविंग सफिशिएंट इंटेलिजेंस। तीसरा भागवत आचार्येर निकट, ही अप्रोचेस अ बोनाफाइड आचार्य। तीसरा लक्षण है कि वो एक प्रामाणिक आचार्य के पास आश्रय लेने के लिए तत्पर रहे। आचार्य अभिमान का चौथा लक्षण है कि न केवल वो आचार्य के पास जाए, लेकिन आचार्य के पास जाकर कोई व्यक्ति अभिमान युक्त भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, आप जानते हो क्या। जैसे वेदव्यास जब नारद मुनि के सामने आए तो ये नहीं कहा कि पता है क्या हमने कितने ग्रंथों का निरूपण किया है, पूरा लिस्ट बताता हूं मैं आपको। नहीं, अप्रोच अ बोनाफाइड आचार्य भागवत आचार्य निकट फॉर फोर्थ आपन दुख जानाइया, इन्फॉर्म हिम ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंडीशन। लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं लेकिन वास्तव में अभी तो अनर्थों की पर्वत राशि हमारे हृदय में है, और निष्कपट रूप से आपके सामने ये मैं व्यक्त करता हूं। तो इसलिए टू इन्फॉर्म हिम ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंडीशन कि अब हम पीड़ा से युक्त अवस्था में हैं और इस भौतिक जगत के सागर में स्वतंत्र रूप से भोग विलास करने की इच्छा के जनित होने के कारण ये सारी पीड़ा हो रही है। और पांचवा ताहर सहित दृढ़ संबंध, एस्टैब्लिश फर्म रिलेशनशिप विद द आचार्य, आचार्य के साथ एक दृढ़ संबंध स्थापित करना कि चाहे इस भक्ति की यात्रा में कितने उतार चढ़ाव क्यों न हो लेकिन हम आपके साथ अपने संबंध को घनिष्ठ बनाए रखेंगे, कभी काल के किसी तलवार को इसे कटने नहीं देंगे। और छठा भागवत भजन करार, एंगेज इन डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और इस ये पांच भावनाओं के साथ जब हम छठा अभिधेय में लगते हैं, भक्ति के कार्य में लगते हैं, भागवत भजन करार, बट टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस वन मस्ट फील इनकेपेबल, वन मस्ट फील नॉट सफिशियंटली इंटेलिजेंट, वन मस्ट अप्रोच द आचार्य, इन्फॉर्म हिम ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंडीशन, एस्टैब्लिश फर्म रिलेशनशिप। तो ये जो है बड़े आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं हैं। तो इसको कहते हैं आचार्य अभिमान, अर्थात एब्सोल्यूट डेडिकेशन टू द आचार्य, एब्सोल्यूट डेडिकेशन टू द आचार्य। तो इसलिए यहां पर महाप्रभु कहते हैं सर्वशास्त्रे कृष्ण भक्ति नहीं जार सम, अत एव अद्वैत आचार्य तार नाम। ये है अद्वैत आचार्य जिन्होंने सब शास्त्रों के निचोड़ को पी गए हैं और कृष्ण भक्ति में अद्वितीय हैं, इसलिए ये अद्वैत आचार्य हैं। महाप्रभु उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर महाप्रभु अपने समक्ष नित्यानंद प्रभु को देखकर, नित्यानंद प्रभु को संकेत करते हुए भट्ट को कहते हैं नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर भावोन्मादे कृष्ण भावोन्मादे मत कृष्ण प्रेमेर सागर। अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देखकर कह भी सकते थे, अरे भट्ट जानते हो क्या कौन है, अवधूत है, पता नहीं कब क्या करेगा, कोई भरोसा ही नहीं। और ये और अद्वैत आचार्य तो झगड़ा ही करते रहते, कभी घर पे भोजन करने जाओ तो चावल को उठा उठा के पटक देता है कभी कभी, ऐसा भी बोल सकते थे। लेकिन महाप्रभु ने क्या कहा, नित्यानंद अवधूत साक्षात ईश्वर, ये साक्षात ईश्वर हैं और भावोन्मादे मत्त, ये कृष्ण के भाव में उन्मत्त रहते हैं। कृष्ण प्रेमेर सागर, ये कृष्ण प्रेम के सागर हैं। और भट्ट उनको देख करके रो, इतने प्रतिभाशाली इतने शक्तिशाली, देखने से समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम एक लेवल पर हो, जब हम पूरी तरह आश्वस्त हो कि हमें ये कार्य करना है, सो लेवल वन इज समवन परस्यूज अ विजन हिमसेल्फ बट ही कैनॉट कन्विंस अदर्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन अचीवर। अचीवर अर्थात जो कोई कार्य सिद्ध करे व्यक्तिगत रूप से, लेकिन दूसरों को वो समझा नहीं पाता और दूसरों को साथ में लेके नहीं चल पाता, वो अकेले ही तलवार लेके आगे बढ़ रहा है और कह रहा है सेना चलो, और पीछे मुड़ के देखता कोई नहीं। तो इसलिए ये है लेवल वन। अचीवर और लीडर में अंतर क्या है, लीडर इज अ पर्सन विद अ विजन हु कैन कन्विंस अदर्स, न केवल उसकी दृष्टि है, वो दूसरों को भी इसके विषय में समझा पाते हैं। तो इसलिए अब जो अनुयायी हैं उनका उत्तरदायित्व तो क्या है, अ फॉलोअर हु हैज नो विजन शुड अटैच हिमसेल्फ टू अ लीडर विद अ विजन वॉट ही वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ। तो जिसका अगर कोई कहे मेरा तो अपना कोई विजन नहीं, ठीक है, ऐसे एक लीडर के साथ जुड़ जाओ जिसका विजन है। और इसलिए जो किसी भी परिस्थिति में सबसे अधिक उत्पात मचाते हैं, हु आर द डिसरप्टर्स, पहला दोज हु डोंट हैव द विजन, उनका अपना कोई विजन है नहीं, दूसरा न केवल अपना विजन नहीं है, दे कांट सी द विजन ऑल्सो, जब दिखाया जाए तो विजन देख भी नहीं पाते, दृष्टि नहीं देख पाते, तीसरा दे मे हैव विजन विच इज डेट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऐसे दृष्टि हैं जो संस्था के लिए विनाशक सिद्ध हो सके, और चौथा दे रेफ्यूज टू शेयर द विजन, और वो विजन के बारे में सुनने पर भी वो कहेंगे नहीं नहीं हम इस विजन को स्वीकार नहीं करेंगे भैया, हम तो अपना ही करेंगे। तो इनको कहते हैं डिसरप्टर्स, अर्थात जो ऐसे परिस्थिति में संघ में उत्पात मचा सकते हैं, एंड सच डिसरप्टर्स मस्ट बी रीट्रेन्ड रीअसाइंड और रिमूव्ड। इसलिए जब महाप्रभु ने अचानक छोटा हरिदास के साथ जो आदान प्रदान किया, वो सारे भक्त लोग भ्रमित हो गए इससे, क्योंकि महाप्रभु देखे कि हाँ ये अभी हमारे जो दृष्टि के अनुसार ठीक नहीं। तो वैसे ही अब भट्ट के साथ जो आदान प्रदान कर रहे हैं, महाप्रभु देख रहे हैं कि जिस ब्रज प्रेम की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिस ब्रज प्रेम का वितरण करने जा रहा हूं, वो केवल कुशाग्र बुद्धिता से प्राप्त नहीं हो सकती, वो वास्तविक प्रामाणिक विनम्रता के आधार पर प्राप्त होगी। कोई व्यक्ति केवल प्रखर ज्ञान प्राप्त कर ले और उसके आधार पर अपनी श्रेष्ठता व्यक्त करने का विचार करे और मन ही मन उसको अभिमान हो कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं और मैं दूसरे भक्तों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हूं, ऐसी भ्रांत धारणा जो पाल के चल रहा हो वो हमारे संघ में उत्पात मचाएगा। तो ये सब महाप्रभु पकड़ रहे हैं, और इसलिए सच पर्सन मस्ट बी रिट्रेन्ड, रीअसाइंड और रिमूव्ड। फिर महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को देखते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य को देखकर उनकी स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति सबसे रोमांचक है, क्योंकि सब जानते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्ति में कौन लेके आए। महाप्रभु ने उनको वेदांत से लेकर जो उनकी धारणा थी उसको परिवर्तित कराया। लेकिन महाप्रभु यहां क्या कह रहे हैं, षड दर्शन वेत्ता भट्टाचार्य सर्वभौम षड दर्शन जगत गुरु भागवत उत्तम। ये भागवतों में सर्वोत्तम है सार्वभौम भट्टाचार्य। और जितना महाप्रभु उन भक्तों की स्तुति कर रहे हैं, वो भक्त लोग भी अपना सीना नहीं तान रहे हैं, वो भी नम्रता पूर्वक सुन रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये महाप्रभु की कृपा का परिचय है कि वो हम लोगों के अंदर सद्गुण देख रहे हैं। सददर्शने जगत गुरु, ये सद दर्शनों में सबसे बड़े गुरु हैं, लेकिन भागवतोत्तम, सभी भागवतों में श्रेष्ठ हैं। सददर्शन वेत्ता भट्टाचार्य सर्वभौम, ये भट्टाचार्य सार्वभौम षड दर्शन में पारंगत विद्वान है। तो नंबर वन, ही इज अ स्कॉलर। नंबर टू, ही इज जगत गुरु, ही इज अ स्पिरिचुअल मास्टर। नंबर थ्री, ही इज द बेस्ट डिवोटी, सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, सबसे बड़े विद्वान हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं ये, महाप्रभु कह रहे हैं। तेहा देखा इला मोरे भक्ति योग पार, तार प्रसादे जानी लूं कृष्ण भक्ति योग सार। महाप्रभु अपने हृदय के अंतःकरण से अपनी प्रामाणिक भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि तेहा अर्थात सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा इला मोरे, उन्होंने मुझे दिखलाया भक्ति योग पार, भक्ति योग की पराकाष्ठा का दर्शन इन्होंने मुझे कराया। भट्ट को कह रहे हैं, और तार प्रसादे जाने लू कृष्ण भक्ति योग सार, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति योग का सार तत्व इन्होंने प्रकाशित किया। तो ये वास्तव में महाप्रभु प्रामाणिक रूप से कह रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेक सहितम ज्ञानम परम गीयते। ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान वैष्णवों को प्रिय है, पारमहंस संहिता है, एकममलम ज्ञानम परम गीयते, ये अमल पुराण है। क्यों? इस पुराण के अंदर शुद्ध भक्ति को छोड़कर अन्य कोई कलंक नहीं, इसके अंदर द्वेष का कोई स्थान नहीं। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम, और इसके अंदर भक्ति को उत्पादन करने के लिए ज्ञान कर्म इत्यादि को सही रूप से प्रयोग किया गया है। तत्श्रृण्वन, उसको सुनकर, सुपठन पढ़कर, विचारण परो, विचार करके, चर्चा करके, भक्त्या विमुच्येत नरः, कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत को पार कर सकता है। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। तो कहते हैं दो प्रकार के भागवत बताए गए हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक है शास्त्र भागवत, और आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, वो डिवोटी भागवत जो भक्ति रस पात्र। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, ये जब गिरिराज महाराज ने पढ़ा तो उनको लगा, अरे मैं तो जुहू मंदिर के कंस्ट्रक्शन में और बाकी कई दूसरे कार्यों में लगा हूं, नित्यम भागवत तो नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, तो प्रभुपाद ने कहा नित्यम भागवत अर्थात एक है ग्रंथ भागवत, दूसरा व्यक्ति भागवत। तो इसलिए भागवत के अंदर हमारी भ्रांत धारणाओं को परिवर्तन करने की शक्ति सन्निहित की गई है। अम्बरीश महाराज गृहस्थ हैं, राजा हैं, उनको श्रेष्ठ बताया गया है। सुत गोस्वामी जन्म से ब्राह्मण नहीं, उनको भागवत के प्रवक्ता का अधिकार दिया गया है। आयु के दृष्टि से ध्रुव महाराज कम आयु के हैं, भक्ति उन्हें प्राप्त कराया गया। सामाजिक श्रेणी के दृष्टि से जड़ भरत निकृष्ट हैं, लेकिन वो राजा को कथा कर रहे हैं रहुगण को। शिक्षा के दृष्टि से ब्राह्मण पत्नियों ने के अंदर संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं। निषिध्यमाना पति भी भ्रातृ भी बंधु भी सह भगवती उत्तम श्लोक दीर्घ श्रुत धृताशया, लेकिन फिर भी उनके अंदर कृष्ण के चरणों के प्रति इतनी तीव्र लालसा है, श्रद्धा है, हर प्रकार के उनके ऊपर आक्रमण होने पर भी, निर्बंध होने पर भी वो उसको लांग कर निकल गए। क्यों? दीर्घ श्रुत धृताशया, दीर्घ काल तक उन्होंने भक्ति के ज्ञान को, कृष्ण की कथा को श्रवण किया था। स्पीशीज या अलग अलग योनि का भी कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि वृत्रासुर असुर हैं, और असुर होकर कहते न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सर्वभौम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धि मा पुनर्भवम वा समंजसात्वा विरह्य कांक्षे, मुझे केवल शुद्ध केवला भक्ति चाहिए। और इंद्र हैं वो स्वर्ग के सत्ता के पीछे पागल। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम इन्वर्ट्स अवर अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए हाउ डू यू आइडेंटिफाई प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति को कैसे हम समझ पाए, ढूंढ सकें, क्योंकि यहां पर महाप्रभु कह रहे हैं कि तेहा देखाइला मोरे भक्ति योग पार, ये सर्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे भक्ति योग की पराकाष्ठा दर्शाई है। और तार प्रसादे जानिलु कृष्ण भक्ति योग सार, कृष्ण भक्ति का सार में समझ सका। तो वो सार क्या है? ये परिभाषा सूत्र है, भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो भागवत का परिभाषा सूत्र है एते चांस कला पुंस, है कि नहीं? दशम स्कंद का और वात्सल्य भाव का, ब्रज भक्ति का परिभाषा सूत्र है त्रया च उपनिषद भिश्च, इस तरह अलग अलग परिभाषा सूत्र बताए गए। तो इसलिए इसमें तीन प्रश्न उठते हैं। व्हाट इज लव, पहला प्रश्न है, अर्थात अनुशीलनम। अनुशीलनम मीन्स कल्टिवेटिंग लव, अनुशीलनम। सो लव मीन्स फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, इट हैज टू बी टेंजिबल, अर्थात उसमें कुछ ठोस व्यक्तिकरण हो। दूसरा, इट इज एक्सप्रेशन, हम वास्तव में व्यक्त करें उस भाव को। तीसरा, इट इज अ डिजायर, वो एक इच्छा है। और चौथा, दैट डिजायर इज टू प्लीज समवन, किसी को संतुष्ट करना हो। सो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लव। लव इज टेंजिबल, इट इज एक्सप्रेस्ड, इट इज अ डिजायर, एंड इट इज टू प्लीज समवन। फिर अगला प्रश्न उठता है, अन्याभिलाषिता शून्यम। सो ये दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाट इज ट्रू लव। तो एक परिभाषा में रूप गोस्वामी 1517 से लेकर 1534 के बीच 17 वर्ष ये एक श्लोक की विस्तृत परिभाषा करने में लगा दिए 17 वर्ष। भक्ति रसामृत सिंधु प्रकाशित हुआ 1534-35 में। He took 18 years to define what is actual love. So what is true love? Is anyabhilashita shunyam. So pehla kya tha? Love, anushilanam, cultivation. But true love means two characteristics. Sabse pehle, it is free. One characteristic. It is free from self-interest. Swarth se vihin. Ye hai mukhya lakshan. Kiska? Vastavik prem ka. True love. To keval love ke char lakshan, true love ka ek lakshan, swarth vihin. Ab tisra prashn uthte hai, anukulyena. What is true divine love? तो इसलिए लव स्टोरी तो बहुत चल रही दुनिया में, बट व्हाट इज ट्रू डिवाइन लव, वास्तविक दिव्य प्रेम क्या है, इसकी परिभाषा देने में पूरा भक्त रसामृत सिंधु लिख दिया है. और ये इस्कॉन का मूल मिशन है, टू हेल्प एवरी डिवोटी एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस द ट्रू डिवाइन लव. तो इसलिए अनुकूलेन कृष्ण, कृष्ण के लिए अनुकूल. तो इसके अंतर्गत ये चार लक्षण है. पहला रिपोज्ड इन कृष्णा, दूसरा इट इज एन इंटेंशन, तीसरा टू सेल्फलेसली, खैर वो तो आई गया पहले वाले में, इसमें वापस उसका वर्णन आया है, और चौथा टू प्लीज कृष्ण. सो इट इज अ ट्रू लव रिपोस्ट इन कृष्णा विद द इंटेंशन टू सेल्फलेसली प्लीज कृष्ण. ऐसा शुद्ध प्रेम जो निस्वार्थ सेवा भाव के साथ कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हमारे हृदय में जो सन्निहित हो, उसको कहते हैं शुद्ध दिव्य प्रेम. तो इसलिए हाउ इज प्योर लव टेस्टेड, शुद्ध दिव्य प्रेम का परीक्षा क्या है. कोई कहेगा हमारे अंदर भी है ऐसा लग रहा है, कई साल हो गए भक्ति करके, दीक्षा के बाद 10-15 साल हो गए, ऐसा लग रहा है कि अंदर थोड़ा थोड़ा प्रकट हो रहा है, किसी को लग सकता है. तो फिर कहते हैं इसके पांच लक्षण है. नंबर वन, सच प्योर लव इज सेल्फलेस, विच इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ पर्सनल गेन, अपना कोई स्वार्थ नहीं. दूसरा इट इज स्टेडी, ये बिल्कुल नियमित रूप से स्थिर रहे. स्टेडीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ प्योर डिवाइन लव. जो कहते हैं ना कृष्ण भक्ति योग सार, क्या, विच इज कंटिन्यू ऑन, नंबर वन. नंबर टू, without loss of enthusiasm. Number three, despite obstacles. Steadiness के ये तीन लक्षण हैं. स्थिरता के तीन लक्षण क्या हैं? अड़चन आएगी, लेकिन अड़चन आने पर भी, number two, आगे चलते रहो, अपनी यात्रा बनाए रखो बिना उत्साह के नाश के. टू कंटिन्यू विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाज्म डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स, इसको बोलते हैं स्टेडीनेस, स्थिरता. तो ट्रू लव इज सेल्फलेस, इट इज स्टेडी, एंड थर्ड सीरियस, विच इज नंबर वन अटेंशन टू डिटेल, कि कोई हर डिटेल के ऊपर ध्यान रखे कि हम किस तरह इस सेवा को अच्छी तरह कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि 10 साल 15 साल हो गए तो फिर बोले अरे यार बहुत साल से कर रहे छोड़ो इसको. अटेंशन टू डिटेल नंबर वन, एंड नंबर टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. उस प्रयास में, उस सेवा में निरंतर सुधार के लिए हम मनन करें, कैसे मैं इस सेवा को सुधार सकता हूं. कंटेम्पलेट ऑन कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ I am serious in my bhakti. Are you attentive to details? Are you contemplating on continuously improving your service? Then you are serious. चौथा, कभी कभी व्यक्ति जब खुद बहुत सीरियस हो जाता है तब आसपास देख के बोलने लगता है, तू क्या कर रहा है, बेकार, तू तो नालायक, तू तो किसी काम का नहीं. तो नहीं, चौथा इज सेंसिटिव टू बी कॉन्शियस ऑफ अदर्स. कि भाई हाँ, हम भले जिस स्तर पर भक्ति कर सकें, हर व्यक्ति को अपने स्तर के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा और भक्ति करने का अवसर दिया जाए. सो दैट इज सेंसिटिविटी. बी कॉन्शियस, अर्थात दूसरों के संबंध में हम भावना रखें. पांचवा, इतना सब होने पर भी गर्व न हो. टू रिमेन सिंपल, दैट आई एम अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट. मैं भगवान के हाथों में एक नम्र कठपुतली हूँ, एक भगवान के हाथ में भगवान के इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए निमित्त मात्र हूँ. सो देयरफॉर ट्रू लव एंड डिवोशन इज सेल्फलेस, स्टेडी, सीरियस, सेंसिटिव एंड सिंपल. तो इसलिए महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाकर, षड दर्शन बेत्ता भट्टाचार्य सार्वभौम, षड दर्शन जगत गुरु भागवत उत्तम. ये तो इतने बड़े जगत गुरु हैं, भागवतों में उत्तम है, और आप मेरी स्तुति कर रहे हो ना भट्ट जी, कि मेरे अंदर ये गुण है, वो गुण है, मैं भगवान से शक्ति प्राप्त किया हूं इत्यादि इत्यादि. ते हो देखा इला मोरे भक्ति योग पार, इन्होंने मुझे भक्ति योग क्या है उसकी सीमा बताई है सार्वभौम भट्टाचार्य ने. तार प्रसादे जानी लू कृष्ण भक्ति योग सार, इनके संग से, इनके प्रोत्साहन से, इनके संकेत से, इनके हस्ताक्षेप से, इनके विशेष कृपा से मैं वास्तव में भक्ति योग के सार को अपने जीवन में समझ पाया हूं, पहचान पाया हूं, उतार पाया हूं. इसलिए हमेशा हमें इस बात का स्मरण रहना चाहिए. तो अब महाप्रभु ने अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य की स्तुति की और कहा कि ये सब मेरे वास्तविक गुरु हैं जो मुझे भक्ति के विषय में बतला रहे हैं. तो समस्या कई बार ये होती है कि लोग आके हमको कहते हैं, आप भक्ति करो, ऐसे सुधरो, ऐसे परिवर्तन लाओ, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमको श्रद्धा नहीं होती कि हम क्यों करें, इनकी बात क्यों माने, क्या आवश्यक है इतना. वी टेक थिंग्स चीपली. व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स ऑन द डोर वी कंप्लेन ऑफ द नॉइस, ऐसा कहा गया है. लेकिन महाप्रभु वल्लभ भट्ट के सामने बता रहे हैं, मैं एक एक भक्त से, ये सब रत्न हैं, इन रत्नों से जो प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है वो प्रकाश के कारण ही आप कुछ देख पा रहे हो. सैन डिएगो में एक अपने वेलविशर थे जिनको बहुत प्रचार किया जाता था कि भाई भक्ति में सीरियस हो जाओ, माला बढ़ाओ, ये करो. हाँ हाँ करेंगे करेंगे, हाँ हाँ. अरे भाई मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, एक बार खो जाओगे तो फिर आगे क्या होगा. हाँ 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 ठीक है ठीक है. बस वो अपना डोनेशन देते थे और फिर बाकी खुद अपने जीवन में भक्ति के उतारने के विषय में इतना गंभीर नहीं थे. तो कई बार लगता है कि इनका काम ही है बोलते रहना, परेशान करना. तो वो बस अपने उसमें लगे हुए थे. अचानक उनको एक हार्ट अटैक या स्ट्रोक कुछ हो गया, आईसीयू में भर्ती हो गए. उनकी पत्नी ने फोन किया और जो मंदिर के भक्त थे वो गए, जो मेन इंचार्ज थे मंदिर के. तो वो जब गए तो बिल्कुल कोमा में थे, तो उनकी पत्नी बोलने लगी आप प्रार्थना कीजिए। तो भक्त ने कीर्तन किया, ये किया वो किया, फिर वो मंदिर आ गए। फिर अगले दिन पत्नी का फोन आया, अरे वो कोमा से निकल गए और आपको ही बुला रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो चले गए, जो मेन टेम्पल के इंचार्ज थे वो गए, और जैसे ही वो गए तुरंत वो व्यक्ति जो है कोमा से उठ गए थे और इनको देखकर बोले, अरे पता है क्या, वो चार लोग आए थे। तो वो भक्त को लगा हाँ मैं अपने तीन भक्तों को लेके आया था मंदिर से, हम लोग चार लोग आए थे। बोले नहीं नहीं चार लोग आए थे। तो फिर जो रिश्तेदार थे वो बोलने लगे हाँ हाँ हम लोग भी यहीं पर थे। तो बोले अरे आप नहीं, तो बोले चार लोग आए थे। वो चार लोग कौन, बोले बाकी लोगों को बोला जाओ तुम लोग बाहर। सबको बाहर भगा दिया, केवल वो डिवोटी को अंदर रख के बोले वो यमदूत वो आए थे, चार बार आए। तो बोले चार बार आए, हाँ पहली बार आए और मुझे लेने वाले थे, तो मैं अंदर ही अंदर कृष्ण का नाम लेने लगा और बोला हे मुझे मत पकड़ो, मंदिर में मैं डोनेशन देता हूं, मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर हूं। तो वो फिर चले गए। फिर आए, फिर जैसे आए मैंने फिर कहा हे मैं आपके साथ नहीं, मैं कृष्ण के साथ हूं, मैं कृष्ण के ऊपर आश्रित हूं। फिर वो गए, फिर तीसरी बार आए, फिर मैंने वही दोहराया। फिर चौथी बार आए, उनके साथ वो चार हाथ वाले भी आए। फिर वो आके बोले चिंता मत करो, ये आप परेशान नहीं करेंगे। वो लोग भी बोले अरे अपना यहाँ पर जुरिस्डिक्शन नहीं है, बोल के चले गए। तो बोले आप बोलते थे लेकिन मैंने अनुभव कर लिया, अब मैं भक्ति में बिल्कुल सीरियस होने वाला हूं। तो भक्ति में सीरियस होने के लिए वो दर्शन आवश्यक नहीं है, बाकी शास्त्र का भी श्रवण करके जो दर्शन है वो हमको सीरियस करा सकता है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कितने सुंदर शब्दों में वर्णन कर रहे हैं कि अगर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होनी हो तो वैष्णवों का आशीर्वाद आवश्यक है, और वैष्णवों का आशीर्वाद तब प्राप्त होगा जब हम हर वैष्णव के सद्गुणों को मनन करें, स्मरण करें, दोहराएं और समझें कि मेरी भक्ति के प्रगति के लिए इन सभी वैष्णवों का योगदान और हस्ताक्षेप अनिवार्य है। जब तक ये भावना मन में न हो, हम अपने ही अहंकारवश मिथ्या अभिमान से प्रेरित अलग अलग भावनाओं के अंतर्गत जंजीर में फंसे होंगे और उस दलदल से कभी नहीं निकल सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे और भक्तों की स्तुति करते हैं और आगे इस चर्चा को हम अगले सप्ताह बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की नताय गौर प्रेमानंदी।